نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بہت ہی محبت کے ساتھ ہم آج کے اس ٹاپک کو کمال نفس اور مکارم اخلاق، وہ ہستی جس کی زندگی کی کہانی ہم نے اے ٹو زی پڑھ لی، اور رحیق و مختوم میں اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، ایون آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات پر بھی ایک طویل ٹاپک ہم نے پڑھا اس سیریز میں. تو آج ہم شروع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ کتنے نفیس انسان تھے، یعنی بینگ اے کریکٹر خواز ہی. اور آج اس بات کو اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہ سکے. آج امت مسلمہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کا خوبصورت کردار لوگوں کے سامنے کھولے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو اور دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمارے اپنے اندر بھی یہی آ جائے، یعنی پیورلی. جو لاسٹ سیشن تھا اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری فزیک، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا اور آپ کا ظاہری حسن دیکھا، تو آج ہم آپ کا باطنی حسن دیکھیں گے جو واقعی پھر ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کمال نفس اور مکارم اخلاق. کمال کا لفظ اردو میں آتا ہے، نفس کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. کسی بھی چیز کا کمال اس کی پھیک، اور نفس تو نفس ہے، اور مکارم اخلاق اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی کرم ہے، کاف را میم. تو مکارم مفاعل کا وزن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی کن بلندیوں پہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے. فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ فصیح، فاسخہ بھی لفظ ہے، فصیحہ نام بہت پیارا نام ہے اگر کسی لڑکی کا ہو. بلاغت بلغہ سے، یعنی آپ جو بات کرتے تھے نا وہ سیدھی کسی کے اندر اترتی تھی. آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں پہ اترتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فقروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم، یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے. مشکل لفظ ہیں اور ہماری اردو اب اتنی اچھی نہیں رہی. تو مطلب کیا ہے اس سارے جملوں کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات میں بہت بڑی بات کہہ لیتے تھے. آپ کا سٹائل پینیٹریٹنگ تھا، یعنی ایبزارپشن تھی. جب کوئی آپ کی بات سنتا نا تو اس کا دل کرتا میں مزید سنوں. آج بھی بعض آوازوں میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو سن کر ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ان کی بات کوئی بھی ہو لیکن ان کا انداز بہت سمجھ والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی ایسے تھے. پھر فکرے بہت چھوٹے ہوتے تھے، لمبے لمبے فکرے نہیں بولتے تھے، لفظ نکھرے ہوتے تھے، طبیعت رواں تھی. یعنی آپ اوکے میں نے کہا، اور یہ جو چار لفظ میں نے بولے نا، آپ تھوڑی سی اپنی دو چار منٹ کی ریکارڈنگ کر کے خود سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عام طور پہ لوگ اپنی بات کے اندر کتنے ایفس اینڈ بٹس لگاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صاف تھی اور تکلف نہیں تھا، کوئی بنا کے بات کرنے کا انداز تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں ہے. بہت سیدھی بات کرتے اور جوامع الکلم، یعنی کمپریہنسو سپیچ تھی آپ کی. آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے. لکھئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی دے دے کہ وہ جہاں بیٹھے، جن کے بیچ میں بیٹھے، ان جیسا ہو جائے، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہوتا ہے. دیکھیں، جن سے اللہ نے کام لینے ہوتے ہیں نا اس لیول کے، کیونکہ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو اگلوں آخروں سب کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد تھے نا، تو آپ کو سب کی زبانیں، اور زبان سے میرا صرف لینگویج نہیں ہے، بس آپ کہیں کہ نارویجین اور فرینچ اینڈ ڈچ، یہ نہیں مراد. کچھ کلچر ہوتے ہیں، کوئی اپنائیت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو عرب لوگ جو مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے نا، اللہ کے نبی جب بھی کسی کے بیچ میں جا کر بات کرتے نا، بالکل ویسے ہی ہو جاتے. چنانچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو کرتے. آپ میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب، اور شہریوں کی شستگی الفاظ، اور شفتگی اور شائستگی جمع تھی. और वही पर मबनी ताईद रब्बानी अलग से। कौन जाने इस उर्दू को है, हमारी तो इंग्लिश भी खराब, हमारी तो उर्दू भी खराब, हमारी पंजाबी भी ठीक नहीं है, और बाकियों का क्या कहूँ। मुराद कह के बद्दू अरब लोग, देहाती, आज भी देहातियों की जुबान बड़ी निथरी भी सुथरी साफ बोलते हैं। बस आप देखिए कि आप किसी शहर में रहने वाले का जुमला उर्दू का सुने, उसमें दो तीन इंग्लिश के लफ्ज होंगे, हालांकि देहातों में रहने वाले सीधी सीधी सिंपल प्लेन लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत मुश्किल उर्दू ना भी हो लेकिन सीधी जरूर होती है। इसी तरह आप के अंदर कुव्वत तखातुब, तखातुब क्या होती है, किसी को एड्रेस करना, यानी अल्लाह ने आपको ये कुव्वत दी थी, ये एक आपकी पावर थी कि आप किस तरीके से किसी को खिताब करें और उस पर असर क्या हो। फिर शुस्तगी थी। आज मैं और आप भी जरा अपने बोलने के ऊपर गौर करें, और खास तौर पर जब बच्चों से बोलते हैं, जब गुस्से में बोलते हैं, जब मुलाजिमों से बात करते हैं, जब हम अपने से छोटों से बात करते हैं। और आप देखिए कि जितना ज्यादा आपकी बात ऐसी होगी ना कि जो दूसरों के दिल तक जाए, उतनी आपकी बात में असर भी होगा। फिर शायस्ता थे, शगुफ्ता, शगुफ्ता मीन फ्रेश। आपको देखकर ऐसे नहीं लगता हाय सारे दिन के थके हुए, क्या करूं, बोला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। जैसे हम अक्सर रात को अपने घर वालों के सामने बोलते हैं, बेचारे सारा दिन बाहर रह के आके शाम को हमारे दुख सुनते हैं, हाय थक गई, सुबह से बैठी नहीं। फिर इस तरह एक एक लफ्ज़ पे नोट कीजिएगा। नंबर एक, बुर्दबारी, हम्बलनेस, कुव्वते बर्दाश्त। आप देखिए कि ये वो खूबियाँ होती हैं कि जिन चीज़ों को पाने के लिए आज लोग ट्रेनिंग द ट्रेनर्स जैसे कोर्सेज करते। आज की ज़ुबान में ये भी एक किस्म का फ़न बन गया कि आपको कि बोलना सिखाए। एक किताब है, मीठे बोलों में जादू है, असल में इंग्लिश की एक किताब का तर्जुमा है, बोलने का तरीका बताया गया, और इसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज हैं। आप अमेरिका में जाइए, $500 तक का कोर्स है, जो सिर्फ लोगों को रिसेप्शन पे बैठने से पहले करवाया जाता है, ताकि आप एक इदारे को प्रेजेंट करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं, हेलो कहने से, फ़ोन उठाने से, बात करने से, कस्टमर डीलिंग, एक एक चीज़ लोग पैसे दे के सीखते हैं, और पीछे बड़े सबके लाके होते हैं, फलां यूनिवर्सिटी और फलां ट्रेनर और इतने पैसे। अल्लाह के नबी को कौन सिखा रहा था? लिखिए एक बात, सच्चा ईमान अंदर आ जाएगा ना, तो ऐसे ही कि जैसे आप अंदर से सेहतमंद हुए ना, तो आपके जिस्म पे, आपके रंग ढंग पे, आपकी हेल्थ पे उसका असर बाहर से दिखता है। जब आप अपने सारे मामले अल्लाह के हाथ में देते हैं, अल्लाह को मुख्तारे कुल समझते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं क्यों अपनी फिक्र करूं, मैं अपने बच्चे की फिक्र क्यों करूं, मुझे किसी से क्या लेना, मुझे क्या देना। खुद बहुत बुर्दबारी आती है। बुर्दबारी के लफ्ज़ को अगर आप देखें ना, तो उर्दू का नहीं, ये फारसी और उर्दू मिलाकर बना हुआ लफ्ज़ है, बुर्द और बार। बार कहते हैं बोझ को, आपने कभी सुना है बार बर्दारी, बुर्दबारी बोझ उठाना। ये कौन होता है? ठंडे स्वभाव का बंदा। कोई भी उसको कुछ कह दे, गाली दे दे, डांट दे, थपक दे, वो अपने ऊपर उसकी बात का बोझ बर्दाश्त कर लेता है, टाल देता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं वाकई इन सारी चीजों में जो मर्जी कहना है मुझे कह लो। तो बुर्दबारी नबी की शान थी। हमें तो कोई बात कहे तो जाए किधर। कभी आप और मैं अपने ऊपर लेकर इन चीजों को सोचे ना, तो ये सीरत की बातें, आपका अखलाक और आपका कमाले नफ्स, ये असल में एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है। तो अल्लाह के नबी के अंदाज में क्या था? बुर्दबारी। दूसरी चीज पे चलिए, जो आपके अंदाज में थी और हमने इसको सीखना है, कोई बात नहीं, हम अपने प्यारे नबी से सीख रहे हैं और अजर की नियत से सीख रहे हैं, डबल अजर है। कुव्वते बर्दाश्त थी, टॉलरेंस था। कुव्वते बर्दाश्त ना होने की वजह से आज घर घर में लड़ाइयाँ हैं, जो घर टूटते हैं, जो तलाकें होती हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जो भी मेरे सामने चीज़ थी उसका खुलासा क्या था कि अमूमन घर क्यों टूटते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कुव्वते बर्दाश्त की कमी। बाद में मियाँ भी कहते हैं मैं थोड़ा सा सबरी कर जाता, और बीवी भी कहती है कुछ मैं ही ज़्यादा बोल गई। हर झगड़ा, हर लड़ाई जो बाद में हमें भुगतनी पड़ती है ना, ये हमारी बर्दाश्त की कमी की वजह से होती है। तीसरा अमल देखिए, कुदरत पाकर दरगुजर। सुबहान अल्लाह, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई सरजिंच नहीं। पता है मक्का में, जबकि 21 साल से जो दुश्मन आपको सता रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें आज मुझसे उम्मीद क्या है? आप देखिए कि दुश्मन भी आपसे अच्छी उम्मीद रखे, ये तो बड़ी बात है। तो जब आपने अपने साथियों से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें मुझसे उम्मीद क्या है, तो कहा कि अल्लाह के नबी आप हमें माफ कर देंगे। कहा अच्छा जाओ फिर मैं भी तुम्हें वही कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था। सुभान अल्लाह। अगली चीज, कुदरत पाकर दरगुजर के बाद मुश्किलात पर सब्र। अब देखिए ये चार चीजें हैं, मुश्किलात पर सब्र, बुर्दबारी, कुव्वते बर्दाश्त और कुदरत पाके दरगुजर करना। सच बताइए सब में एक ही चीज कॉमन नहीं है, ये जो हमारे अंदर हाइपरनेस होती है ना, और हम उछलते और कूदते और तड़पते और तड़पाते और हम कहते हैं अब जाए किधर कोई, अब मुझे कह दिया, अब देखना। याद रखिएगा ये आपकी शख्सियत होती है, और शख्सियत बाहर से नहीं बनती, ये अंदर से बनती है। छोटे छोटे पजल्स मिलकर बच्चा एक गेम बनाता है, एक तस्वीर बन जाती है ना, कोई खिलौने के अंदर चीजें हैं। इसी को देखिए, इन सारी चीजों को आप अपनी जिंदगी में लेकर देखेंगे ना, तो आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा। सिर्फ एक खूबी अपने अंदर ले आइए, बाकी सारी खुद ही आ जाएंगी। और अंदर खाते फिर इसमें सब्र है। हमारे यहाँ सब्र का एक बड़ा रिवायती सा मजमू है, तो फिर इतनी बात का खुलासा करती हूँ। हमारे बोलने के अंदाज में, हमारे बात करने के अंदाज में, हमारा दूसरों से मामला करने के बीच में कॉमन थिंग क्या है कि हम अंदर से कितने मुतमईन हैं। तो ये वो असाफ थे जिनके जरिए अल्लाह ताला ने आपकी तरबियत की थी, हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लफ्जिश और कोई ना कोई जुबान की बेख्तियाती जानी जाती है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलिम यह था कि आपके खिलाफ दुश्मनों की ईजा रसानी और बदमुआशों की खुदसरी और ज्यादती जिस कदर बढ़ती गई, आपके सब्रो हिल में इसी कदर इजाफा होता गया। आप देखिए हलीम बनाते हैं, बड़ी बड़ी सख्त चीजें गल गला के घोट घाट के कैसे करते हैं। अगर कभी हलीम में से हड्डी निकल आए, आप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो दांत की वो जो जड़ है ना उसमें घुस जाएगी। हलीम वो बंदा होता है, सारे लाओ बिस्मिल्लाह, और गालियां और बातें और गीबतें और बुरा, मैंने भी एक दफा ग्राइंडर चलाना है, मैंने भी सारा बर्दाश्त कर देना, हर एक की बात आपके अंदर पढ़ के ब्लेंड हो जाए। देखिए जरा सी शुरू में मुश्किल लगता है, दैट्स इट, बाद में तो बड़ा मजा आता है। फिर तो दिल करता है कोई आपको सताए और आप उसको माफ करें, कोई आपको बुरा कहे तो आप भला कहें, कोई आपको गाली दे तो आप उसको दुआ दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता, तो आप वही काम इख्तियार करते जिसमें आसानी होती। आज हम न जाने कहाँ से दीन सीख कर आ गए, मुश्किलों में डाल दो, शोबदेबाजी और करतबबाजियाँ और इतने फतवे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अल्लाह के नबी वो काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। और इसको अक्सर मैं एक मिसाल से समझती और समझाती हूँ कि आप गर्मियों की दोपहर में पैदल चल रहे हैं, सड़क में एक साइड पे धूप है, दूसरी तरफ थोड़ा सा साया है, तो अल्लाह के नबी साये में चलते हैं। खाम खा अपनी जान को बोझ में डालना, लोग कहते हैं जी हम तो पैदल हज करेंगे, मदीना में जाएंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, अल्लाह के नबी होते तो डांटते आपको क्यों बीमार हो रहे हो। शर्त एक है कि गुनाह का काम ना हो, अगर गुनाह का काम होता है तो आप सबसे बढ़कर इससे दूर रहते, यानी गुनाह नहीं, अगर गुनाह वाला काम है तो फिर आसानी तो छोड़िए, चाहे वो और कुछ करने से मिल भी उससे जाता फिर भी ना वो करते। आपने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना लिया? हमारी तो सारी जंगें और लड़ाइयां अपने लिए हैं। देखिए नमाज में क्या कहते हैं, व तआला जद्दुका, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, और सलाम फेरते ही जायनमाज तय करते ही हमारी सारी जंगें अपने खिलाफ होती हैं। मुझे ये कह दिया, मुझे इज्जत ना दी, मुझे क्या समझा, मुझे नीची कुर्सी पे बिठा दिया, मुझे तो खाना पूछा ही नहीं। अल्लाह की बंदो, तुम अपने आप को फिरौन से बड़े समझते हो? इंसान का नफ्स है ना, इसके ऊपर पाँव रख के कुचल दीजिए, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आसान होगा। हम कहते हैं मेरे तो सर से पांव तक आग लग गई, और अगले भी फिर तीली लगा के मजा देखते हैं कि आप तड़पते हुए लगते कैसे हैं। तो नफ्स के लिए कभी इंतकाम न लिया, अलबत्ता अगर अल्लाह की हुरमत चाक की जाती तो आप अल्लाह के लिए इंतकाम लेते हैं, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। शायद ही कभी अल्लाह के लिए किसी से नाराज़गी ली हो, हम कहते क्यों बुरे बने। शायद ही कभी अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला पे हमें अमल का मौका मिला हो कि अल्लाह प्यार करना है तो तेरे लिए करना है। वो हबशी था बिलाल, गैर अरब था, लेकिन कितना प्यारा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अबू लहब चचा था शोलों का बाप, हुसन में एक से एक बढ़ के, जो भी हो सकता था, लेकिन अलबुग्जु फिल्ला, बुग्ज तो बुग्ज है। आज से अपनी मोहब्बतों और अपनी नफरतों को नबी की सीरत के मुताबिक लाइएगा, आप देखेंगे सुख का सांस ले गए। और ये जिनको आप खुश करना चाहते हैं, उन्होंने आज तक ना हुए, ना होना है, और ना कभी हुए होंगे। सिर्फ अल्लाह के लिए काम करें, प्यार भी अल्लाह के लिए, बुग्ज भी अल्लाह के लिए। सगा बेटा है नूह का, या बुनैया अरकब माना, है बेटा आ जा कश्ती में सवार हो जा। लेकिन जब देखा कि बेटा नहीं मान रहा, अल्लाह ने कहा या नूह ये क्या किया आपने, मुशरिक बेटे के लिए दुआ कर ली। तो याद रखिए ये है तो बड़ा मुश्किल, ये इमोशनल टॉर्चर होता है। हम जज्बाती कुर्बानियाँ नहीं देते, बकरे और गाय भैंसे बहुत कुर्बान करते हैं। आप सबसे बढ़कर गैज़ो गज़ब से दूर रहते थे, यानी आपको ना गैज़ अच्छा लगता था ना गज़ब, और सबसे जल्द राजी हो जाते थे। सुभान अल्लाह, कभी नाराज़गी हो जाती है, साथ रहतों में हो जाती है, दो बहनों में हो जाती है, सहेलियों में हो जाती है, शोहर बीवी में दिन में 4 दफ़ा होती होगी, भाई भाई से लड़ता है, सोने से पहले सुलह कर लीजिए। राजी रहे, तुम भी राजी हम भी राजी, जल कुड़ के किसी को क्या मिला, आपका नुकसान हुआ। जूदो करम का बसफ ऐसा था, किसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। जूद क्या होता है और करम क्या है, जेनरस, खर्च करने वाले, सखी। आप उस शख्स की तरह बख्शिश और नवाजिश फरमाते थे जिसे फकर का अंदेशा ही ना हो। ये जुमला एक गैर मुस्लिम ने बोला था आपके लिए, जब हुनैन की जंग थी, इतना कुछ मिला, हजारों की तादाद में बकरियां और जानवर आ गए, तो आपने एक शख्स को इतनी बकरियां दी कि पूरी वादी बकरियों से भर गई। उसने और मांगी, और दे दी, और दे दो। उसने जाकर अपनी कौम से कहा, जाओ मोहम्मद से मांगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब देते हैं ना तो उनको कोई गम नहीं होता कि मैं पीछे फकीर ना रह जाऊं। हम कहते हैं पहले अपने लिए रख लो। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पैकरे जूदो सुखा थे, और आपका दरियाए सखावत रमदान में इस वक्त ज्यादा जोश पर होता जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात फरमाते, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमजान में आपसे हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की सखावत में खजाइने रहमत से माला माल करके भेजी हुई हवा से भी ज्यादा पेश पेश होते थे। ये भी हदीस है, हवाओं की तरह आप सखी हो जाते थे। जब हवा चलती है ना, ऐसे लगता है पीछे कुछ नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा, आप ऐसे उड़ाते थे। हम भी उड़ाते हैं कब, जब कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई सेलफोन पसंद आ जाए, कोई जोड़ा पसंद आ जाए, कोई गाड़ी पसंद आ जाए, कोई सोफा पसंद आ जाए, अब कहते हैं कमाते किस लिए हैं, उधार ले लेंगे, कर्ज वो देखो किस्तों पे भी मिलता है। और आप सखावत का बादल थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि ऐसा कभी ना हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं कह दिया हो कि मैं नहीं देता, यानी आपने तो नो कहना कभी सीखा ही नहीं। शुजात, बहादुरी और दलेरी में भी आपका मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सबसे ज्यादा दलेर थे, नहायत कठिन और मुश्किल मौके पर, जबकि अच्छे अच्छे जानबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ गए, आप अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते गए। पाए सुबात में जरा लغزش ना आई, यानी बहुत इस्तकामत थी। देखिए छक्के छूट जाते हैं बड़े बड़ों के, और जब सर पे पड़ती है फिर पता चलता है कौन कितने पानी में है, लेकिन आप तब भी खड़े होते जब कोई भी ना साथ होता। बड़े बड़े बहादुर भी कभी ना कभी भागे और पिसवा हुए, यानी दब गए, गिव अप कर दिया, मगर आप में ये बात कभी ना पाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जब जोर का रन पड़ता और जंग के शोले खूब भड़क उठते, यानी जब लड़ाई खूब जोश पे होती, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे, आपसे बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के करीब ना होता। ये हमने राहबरे कामिल में पूरा टॉपिक पढ़ा है, अल्लाह के नबी एक जरनैल की सूरत में, उसमें इसकी डिटेल्स थी। यानी मैदाने जंग में सबसे आगे। मैं तो आपके बारे में पढ़ते हुए सोचती हूँ, क्या है कोई माँ जिसने ऐसा बच्चा जना हो। वही थी बीबी आमना जैसी आम औरतें थी, वही खाती होंगी, वही इर्द गिर्द का माहौल होगा। लेकिन अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है ना, तो फिर ऐसी औलादें देता है। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी का ये सारा तذकरा सरासर इबादत है हमारे लिए। एक तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत की वजह से, और दूसरे इस वजह से हम कह सुन रहे हैं कि हमने भी ऐसा बनना है। इस पे अमल करेंगे तो देखिए कैसी नस्लें तैयार होंगी। मैं तो पढ़ते हुए सोच रही हूँ, अल्लाह पूरे खानदान में कोई एक बच्चा ऐसा तो दिखे, पूरी गली मोहल्ले में, कोई पूरे बस्ती दोस्तों में कोई एक दो तो ऐसे नजर आ जाएं। आज माएं ऐसे बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, क्योंकि अल्लाह के नबी यूनिक थे। अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत काम देना था, और जिसको काम देना होता है ना, अल्लाह ताला फिर उसको पहले किरदार देता है। याद रखिए, छोटे किरदार के साथ बड़े काम नहीं होते। और अल्लाह के नबी की ये सारी बातें अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दें, जुरत भी है, बहादुरी भी है। इसको कहते हैं हीरो। कौन सा हीरो? दुनिया वाले क्या कहते हैं, कोई अच्छा गा ले तो उसको हीरो, कोई अच्छा खेल ले तो उसको हीरो, कोई अच्छा पढ़ ले तो उसको हीरो। अल्लाह के नबी में तो सब खूबियाँ थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग शोर की तरफ दौड़े तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप लोगों से पहले ही आवाज़ की जानिब पहुँच कर खतरे के मुकाम का जायज़ा ले चुके थे। इस वक्त आप अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के बग़ैर ज़ीन के घोड़े पर सवार थे, गर्दन में तलवार हमाइल कर रखी थी, और फरमा रहे थे, डरो नहीं, डरो नहीं, कोई खतरा नहीं। यानी आप दूसरे तो भी उठकर आते, आप अकेले ही जाकर देखा है कि नहीं, कोई दुश्मन नहीं, जाके आराम करो। आज लीडर्स के साथ नज़ाकत, सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स और न जाने क्या कुछ। आप सबसे ज़्यादा हयादार और पस्त निगाह थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पर्दा नशीन कवारी औरतों से भी ज़्यादा हयादार थे। जब आपको कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से पता लग जाता, ये भी बड़ी बात है। अपनी नजरें किसी के चेहरे पर गाड़ते नहीं थे, ये भी बहुत खूबसूरत मैनर है। कुछ लोग टुकर टुकर किसी के चेहरे को देखते हैं। आप देखिए, अल्लाह के नबी नहीं देखते थे, और गाड़ना क्योंकि दूसरा परेशान हो जाता है। आप आंखों की हिद्दत महसूस करते हैं कुछ लोगों की, कोई भी आपको ताड़ना शुरू कर दे, आप परेशान हो जाएंगे। आप किसी के चेहरे को नहीं देखते थे, निगाह पस्त रखते, यानी नज़रें झुकी हुई होती, और आसमान की बनिस्बत ज़मीन की तरफ नज़र ज़्यादा देर तक रहती थी। क्या हम्बल फेस जहन में आता है। अमूमन नीची निगाह से ताकते। हया और करम नफ्स का आलम यह था कि किसी से नागवार बात रू दर रू ना कहते, और किसी की कोई नागवार बात आप तक पहुंचती तो नाम लेकर इसका जिक्र ना करते, बल्कि यूं फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो हम कहते हैं जी हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, मुंह फट होते हैं, हम दिल में नहीं रखते। कोई कहता है मैं बड़ा साफ दिल हूँ, कोई कहता है जी मैं दिल में नहीं रखता। हाँ, आप दिल में ना रखे अगले का दिल जला दें। आपने दिल साफ किया, अगले का दिल जला दिया, गंदा कर दिया। देखिए, हर बात मुंह पे नहीं कही जाती, बैड मैनर है। आज बच्चों को बोल्डनेस के नाम पर ये कुछ सिखाया जा रहा है, और कहते छुपाने की क्या जरूरत है, तो फिर सब कुछ ही ख़त्म कर दीजिए, प्राइवेसी का तो कोई मैटर ही ना रह गया। और दूसरी बात देखिए कि मुंह पे बात कर, नाम लेके, शख्सियत के नाम लेकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे दीन सीखने सिखाने वाले लोग भी इसका ख्याल नहीं रखते, मिंबर पे आके गरज बरस के नाम लेके रुस्वा करके लोगों को जाते हैं। ये सुन्नत तरीका नहीं है। देखिए, जिसने किया होता है उसको पहले पता लग जाता है, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। इसी तरह फर्जदक के इस शेर, यानी अरब शायर है, उसका एक शेर है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी पे फिट होता है। क्या कहता है कि आप हया के सबब अपनी निगाह पस्त रखते हैं, और आपकी हैबत के सबब निगाहें पस्त रखी जाती हैं। चुनाचे आपसे उसी वक्त गुफ्तगू की जाती है जब आप तबस्सुम फरमा रहे हों। जी, यानी आप देखिए कि आपकी हया थी ना, तो आप आंखें खोल खोल के नहीं देखते थे, और मर्दों में ऐसा तो बहुत कम होता है। आज आप किसी सड़क से गुजरे तो वो आपको शुरू से लेकर अंत तक छोड़ के आते हैं अपनी निगाहों से। टुकर टुकर नजरें उठाते हैं। बाज दफा बड़े बारेश लोग भी नजरें उठा उठा कर आंखें खोल खोल के आते जातों को देखते हैं, और वो भी फिर औरतों को देखना। तो आपकी निगाहें मोस्टली जिसको आप कहते हैं ना आधी खुली हुई, और आप जरा सा कोई भी बच्चे का बड़े का तस्वुर लाएं, बड़ी मासूमियत होती है चेहरे पे जब बंदा आधी आंखें खोले और आधी बंद करे। हम पूरी आंखें खोल के ऐसे अगले को देखते हैं कि खाई जाए अपनी आंखों से। और हैबत होती थी जब कोई आपके सामने आता ना, तो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर एक रोब था, तो लोग आपको देखकर आंखें नीचे कर लेते थे। जब आप मुस्कुराते थे ना, फिर लोग आपसे बात करते थे। आप सबसे ज्यादा आदिल, पाक दामन, सादिकुल लहजा और अजीमुल अमाना थे। यानी अदल था, दामन पाक था, लहजा बड़ा सच्चा था और अमानते देने वाले थे। इसका इतराफ आपके दोस्त दुश्मन सबको है। नबुवत से पहले आपको अमीन कहा जाता था, और दौरे जाहिलियत में आपके पास फैसले के लिए मुकदमात लाए जाते थे। जामे तिरमजी में हजरत अली से मरवी है कि एक बार अबू जहल ने आपसे कहा, हम आपको झूठा नहीं कहते। इस जुमले को हाईलाइट कीजिएगा। दुश्मन बोल रहा है, दोस्त तो कहते ही हैं। क्या कहता है अबू जहल? हम आपको झूठा नहीं कहते, बल्कि आप जो कुछ लेकर आए हैं इसे झुठलाते हैं। इससे पता चलता है कि मक्का वालों की दुश्मनी नबी सल्लम से नहीं थी, उस पैगाम से थी जो आप लेकर आए, क्योंकि वो बाप दादा के तौर तरीकों से मुख्तलिफ था। और मदीना वालों की दुश्मनी पैगाम से नहीं थी, वो भी वही कहते थे। यहूद का पैगाम और इस्लाम का पैगाम कई जगह बिल्कुल सेम पैगाम था, लेकिन उनकी दुश्मनी पैगाम्बर से थी। हमारा काम क्या है एज अ मुस्लिम? पैगाम और पैगाम्बर दोनों के साथ मोहब्बत। कुरान में आयत नाजिल होती है, फइन्नहुम ला युकज्जिबूनक वलकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाही यजहदून। सूरत अल-अन'आम की आयत 33 है। ये लोग आपको नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इसी तरह हिरकल ने अबू सुफियान से दरियाफ्त किया, क्या इस नबी ने जो बात कही है इसके कहने से पहले तुम लोग इन पर झूठ का इल्जाम लगाते थे? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं, आप सबसे ज्यादा मुतवाजे और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए इनके खुद्दाम और हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इसी तरह अपने लिए आप सहाबा कराम को खड़ा होने से मना फरमाते थे। यानी इज्जत नहीं मांगते थे झूठी के, मैं आऊं तो खड़े हो जाओ। मिस्कीनों की आदत करते थे, फुकरा के साथ उठते बैठते थे, गुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे। आज हमारी मासी हमें दावत पे बुलाए, हम कहते छोड़ो इसके घर का, पता नहीं बर्तन भी कैसे धोए होंगे। अल्लाह अकबर, क्या किब्र है हमारे अंदर। सहाबा कराम में किसी इम्तियाज के बगैर एक आम आदमी की तरह बैठते थे, ये भी नोट कीजिए। जरा से चार लफ्ज के आ जाए हमारी तौकड़ी फट जाती है। आम लोगों की तरह बैठे होते थे, पता भी नहीं चलता था नए आने वाले को कि इसमें से अल्लाह के नबी कौन है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, क्या आप अपने जूते खुद टांगते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे, और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है? आप भी इंसानों में से एक इंसान थे, अपने कपड़े खुद ही देखते कि कहीं इसमें जू ना हो, अपनी बकरी खुद धोते थे और अपना काम खुद करते थे। आप सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सिला रहमी फरमाते थे, लोगों के साथ सबसे ज्यादा शफकत और रहमत और मुरव्वत से पेश आते थे, रिहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे। आपका अखलाक सबसे ज्यादा कुशादा था, बदखुल्की से सबसे ज्यादा दूरो नफूर थे। नफूर नफरत, भागना, यानी आपको बद अखलाकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। ना आदतन फुखश गो थे, ना बेतकल्लुफ फुखश गो थे। यानी आज देखिए बेतकल्लुफी के नाम पे दोस्तें दोस्तों के साथ क्या बेहुदा बातें करती हैं, कोई राज राज नहीं रहता एक दूसरे का। ना लानत करते थे, ना बाजारों में चीखते चिल्लाते थे, ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेते थे। किसी को अपने पीछे चलता हुआ ना छोड़ते थे, और ना खाने पीने में अपने गुलामों और लौंडियों पर तरफ़ो इख्तियार करते थे। बुलंदी रफ़त, बुलंदी रफ़ी, यानी ज़रा एक ऊंचा मुकाम के मुझे ज़रा अलग ही बिठाओ, बड़े नहीं बनते थे आप। अपने खादिम का काम खुद ही कर देते थे, कभी अपने खादिम को उफ नहीं कहा, ना इस पर किसी काम के करने या ना करने पर एताब फरमाया। नाराज नहीं होते थे, मिस्कीनों से मोहब्बत करते, इनके साथ उठते बैठते और इनके जनाजों में हाजिर होते थे। किसी फकीर को इसके फकर की वजह से हकीर नहीं समझते थे। एक बार आप सफर में थे, एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ। एक ने कहा ज़िबह करना मेरे जिम्मे, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे जिम्मे, तीसरे ने कहा पकाना मेरे जिम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईंधन की लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे। सहाबा ने अर्ज किया, हम आपका काम कर देंगे, जान निछावर करने वाले ये काम क्यों ना करते। आपने फरमाया, मैं जानता हूं तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज हासिल करूं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की यह हरकत ना पसंद करता है कि अपने आप को अपने रुफका में मुमताज समझे। इसके बाद आपने उठकर लकड़ियां जमा फरमाई। कुर्बान जाए, आप देखिए बड़े से बड़े लोगों को आप सामने रखिए, तो अल्लाह के नबी के तो पाँव की खाक के भी बराबर नहीं है, इसके बावजूद आपके अंदर कितनी आजिज़ी थी। आइए जरा हिंद बिन अबी हाला की कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुनते हैं। हिंद अपनी एक तवील रिवायत में कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम यानी मुस्तकिल कंटिन्यूसली गमों से दो चार थे, हमेशा गौर व फिक्र फरमाते रहते थे। आपके लिए राहत ना थी, बिला ज़रूरत ना बोलते थे, देर तक खामोश रहते थे, अस अव्वल ता आखिर बात पूरे मुंह से करते थे, यानी सिर्फ मुंह के किनारे से ना बोलते थे। कुछ लोगों के बोलने का अंदाज होता है सिर्फ होंठ हिलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते, अंदर से एक बात के उठने का अंदाज नहीं होता। जामे और दो टोक कलेमात कहते थे जिनमें ना फजूल गोई होती थी ना कोताही, नरम खू थे, जफा जू और हकीर ना थे यानी बेवफा नहीं थे। नेमत मामूली भी होती तो इसकी ताजीम करते थे, ये भी बड़ी बात है। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ कोई दे दे, हमारा नखरा ही नहीं खत्म होता, हम नहीं खाते, हम नहीं पहनते, ये भी एक तकब्बुर है। किसी चीज़ की मजम्मत नहीं फरमाते थे, खाने की ना बुराई करते थे ना तारीफ, हक को कोई नुकसान पहुंचाता तो जब तक इंतकाम न ले लेते आपके गैस को या आपके गजब को रोका ना जा सकता था। देखिए अपनी जात के लिए खैर, लेकिन हक के खिलाफ कोई बात करता तो आप फिर इंतकाम लेते थे। अलबत्ता कुशादा दिल थे, अपने नफ्स के लिए ना गजबनाक होते ना इंतकाम लेते, जब इशारा फरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते, और ताज्जुब के वक्त हथेली पलटते, जब गजबनाक होते तो रुख फेर लेते, और जब खुश होते तो निगाह पस्त फरमा लेते। आपकी बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में थी, यानी बहुत मुंह खोल कर कह कहे नहीं लगाते थे। मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते, यानी सफेद दांत थे। लायानी बात से जुबान रोके रखते, साथियों को जोड़ते थे तोड़ते ना थे, इसको भी हाईलाइट कीजिए। हमारा दीन हमें जोड़ने का हुक्म देता है, तोड़ने का नहीं। हम तो अपनों को काट देते हैं, गैरों को क्या जोड़ेंगे। हर कौम के मोजज़ आदमी की तकरीम फरमाते थे, यानी कोई किसी भी मजहब किसी भी मसलक किसी जमात गिरोह का तो उसकी इज्जत करते थे, और इसी को इनका वाली बनाते थे, लोगों के शर से महफूज रहते और इनसे बचाव इख्तियार फरमाते थे। लेकिन इसके लिए किसी से अपनी खंदा जबीनी खत ना फरमाते। खंदा क्या होता है? स्माइल, मुस्कुराना, और जबीन फोरहेड, यानी हंसते माथे से बात करते थे। हमें कोई अच्छा न लगे तो हम तो उसकी तरफ से तुनक निगाहों से देखते हैं कि ये पता नहीं कौन आगे बाहर से, हम तो नहीं इसको जानते, और हमारा तो प्यार मोहब्बत भी बस अपने चंद दीन के नामों के साथ होता है, हम दूसरे को क्या समझें। शादियों में जाएं तो आपस में बातें, किसी जगह बैठ गए तो हम। आप देखिए कि ये प्यार अपने अंदर ले आए ना हम तो सब आपके हैं। कहते हैं ना, जुबान शीरी मुल्क गिरी, मीठी जुबान आला सारी दुनिया को राम कर लेता। अपने असहाब की खबर गिरी करते और लोगों के हालात दरियाफ्त फरमाते, अच्छी चीज़ की तहसीन और तस्वीब फरमाते। क्या होती है तहसीन? हुसन से तारीफ, और तस्वीब स्वाब, स्वाद वाव बास है। साहिब राय का लफ्ज़ सुने आपने? वही चीज़ है, यानी मुराद यह कि जब आपके सामने कोई अच्छी चीज़ होती ना तो आप उसकी बहुत तारीफ करते और उसकी ठीक हक पहचानते, और बुरी चीज़ की तकबीहो तौहीन, यानी उसको कभी समझते। बुरी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी, मोतदिल थे यानी बैलेंस्ड, अफरात और तफरीत से दूर थे, नो एग्जेजरेशन, गाफिल ना होते थे कि कहीं लोग भी गाफिल या मलूल खातिर हो जाएं, यानी आप चूंकि खुद अलर्ट रहते थे तो आप इर्द गिर्द वाले भी अलर्ट रहते थे, हर हालत के लिए मुस्तैद रहते थे, मुराद तैयार। हक से कोताही ना फरमाते, ना हक से तजावुज़ फरमा कर ना हक की तरफ जाते थे। जो लोग आपके करीब रहते थे वो सबसे अच्छे लोग थे, और इनमें भी आपके नज़दीक अफसल वो था जो सबसे बढ़कर खैर ख्वाह हो, नोट कीजिए, दीन नसीहा। दीन खैर ख्वाही का नाम है। किसी की भी, हुक्काम से लेके आम लोगों से लेके अपनी जात, सबके सिंसियर रहिए, मत किसी का बुरा सोचें। और सबसे ज्यादा कदर आपके नजदीक उसकी थी जो सबसे अच्छा गमगुसार और मददगार हो। आप उठते बैठते अल्लाह का जिक्र जरूर फरमाते, जगह मुतय्यन न फरमाते कि इस जगह बैठ के ये करना है तो इस जगह बैठ के ये पढ़ना है। हर वक्त खुला जिक्र करते थे, यानी अपने लिए कोई इम्तियाजी जगह मुकर्रर ना फरमाते थे, यानी कोई खास आपकी डिस्टिंग्विश्ड प्लेस नहीं थी कहीं बैठने की। जब कौम के पास पहुंचते तो मजलिस में जहां जगह मिल जाती बैठ जाते, और इसी का हुक्म भी फरमाते। सब अहले मजलिस पर बराबर तवज्जो फरमाते, हत्ता के कोई जलीस, जलीस कहते साथी को, जलसा, कोई जलीस ये ना महसूस करता कि कोई शख्स आपके नजदीक इससे ज्यादा बाइज्जत है। कोई किसी जरूरत से आपके पास बैठता या खड़ा होता तो आप इतने सब्र के साथ इसके लिए रुके रहते कि वो खुद ही वापस होता। कोई किसी जरूरत का सवाल कर देता तो आप इसे अता किए बगैर या अच्छी बात कहे बगैर वापस न फरमाते। आपने अपनी खंदा जबीनी और अखलाक से सबको नवाजा, यहाँ तक कि आप सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे और सब आपके नजदीक यकसां हक रखते थे। किसी को फजीलत थी तो तकवा की बुनियाद पर। आपकी मजलिस हिल्म व हया और सब्र व अमानत की मजलिस थी। इसमें आवाज़ें बुलंद न की जाती थी और न हुरमतों पर ऐब लगते थे, यानी किसी की बेआबरूई का अंदेशा न था, किसी की बेआबरूई नहीं करते थे, बेइज्जती नहीं करते थे। लोग तकवा की बदौलत बाहम मोहब्बत और हमदर्दी रखते थे, बड़े का एहतराम करते थे, छोटे पर रहम करते थे, हाजतमंद को नवाजते थे और अजनबी को उन्स अता फरमाते थे। आपके चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती, इसको भी नोट करें, फ्रेश। हम तो थके हुए गमों के मारे हुए, हाय क्या बताऊं, कितने गम है, कितनी परेशानी है। नहीं, फ्रेश, बशाशत, रिलैक्सेशन। सखल खू, आसान दो, इजी गोइंग। सखल खू और नरम पहलू थे, यानी लोगों को आपसे मामला करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगता था। जफा जू और सख्त खू न थे, ना चीखते चिल्लाते थे, ना फुखश कहते थे, ना ज्यादा इताब फरमाते थे, ना बहुत तारीफ करते थे। जिस चीज की ख्वाहिश ना होती उससे तगाफुल बरतते थे, यानी उससे बिल्कुल अजनबी रहते हुए। आपसे मायूसी नहीं होती थी, ये भी नोट करें। क्या आपको मिलकर लोग मायूस तो नहीं होते? आपने तीन बातों से अपने नफ्स को महफूज रखा, अल्लाह हमें भी महफूज रखे। कौन सी? रिया से, शो ऑफ, किसी चीज की कसरत से, और ला यानी बात से। और तीन बातों से लोगों को महफूज रखा, यानी क्या? लिखिए, और अपने लिए अभी से पहले सुनने से ही नियत कर लें कि हमने भी ऐसे ही करना है, लोगों के साथ ये नहीं करना। क्या? नंबर एक, किसी की मजम्मत नहीं करते थे, तारीफ का ऑपोजिट। किसी को आर नहीं दिलाते थे, हम तो जब तक अगले को आर दिलाकर रुला ना दे छोड़े ना, शर्मिंदा करते हैं भरी महफिलों में लोग एक दूसरे को। और किसी की ऐब जोई नहीं करते थे, आप वही बात नोके जुबान पर लाते थे जिसमें सवाब की उम्मीद होती। जब आप तकल्लुम फरमाते तो आपके हम नशीं यूं सर झुकाए होते गोया सरों पर परिंदे बैठे हुए। अपने आप को सोचिए इस वक्त भी, मैं क्या कर रही हूँ। और जब आप खामोश होते तो लोग गुफ्तगू करते, लोग आपके पास गपबाजी न करते थे, आपके पास जो कोई बोलता सब उसके लिए खामोश रहते, यहाँ तक कि वो अपनी बात पूरी कर लेता। इनकी बात वही होती जो इनका पहला शख्स करता, जिस बात से सब लोग हंसते इससे आप भी हंसते। आज हम हंसते नहीं कहते, लोग कहेंगे लो जी ये भी हंस पड़े, ये घुल गए मिल गए। भाई रिलैक्स रहिए, क्यों नून में नुक्ता बनते हैं और खास तौर पर चार लफ्ज पढ़ के। और जिस बात पर सब लोग ताज्जुब करते इस पर आप भी ताज्जुब करते। असल में आज हमने बड़ा बनना होता है ना, कि जरा पीरी मुरीदी चले हमारी, कोई कोई हमें बड़ा समझे, शेख साहब और फुलां साहब। ना ना ना, हम नहीं, ना ना ना, चुप। सब आपको देखे शर्मिंदा हो जाए कि ओहो हम तो हंस पड़े, नहीं ज्यादा नहीं हंसते, गुनाह होगा। जो नेक है वो हंसे नहीं। रिफ्लेक्सली जो चीज अच्छी लगती अच्छी लगती, जो ताज्जुब होता आपको भी होता, कोई आपके अंदर आर्टिफिशियलनेस नहीं थी। अजनबी आदमी दुरुस्त कलामी से काम लेता तो इस पर आप सब्र करते और फरमाते, जब तुम लोग हाजतमंद को देखो कि वो अपनी हाजत की तलब में है तो इसे सामान्य जरूरत से नवाज दो। आप एहसान का बदला देने के सिवा किसी से सना के तालिब ना होते, यानी कोई आपकी तारीफें करे। खारिजा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सबसे ज्यादा बावकार होते, अपने पाँव वगैरह ना फैलाते, बहुत ज्यादा खामोश रहते, बिला ज़रूरत ना बोलते, जो शख्स ना मुनासिब बात बोलता इसे रुख फेर लेते। आपकी हंसी मुस्कुराहट थी और कलाम दो टोक, ना फजूल ना कोताह। आपके साहबा की हंसी भी आपकी तौकीर व इक्तदा में मुस्कुराहट ही की हद तक होती। इतना कुछ पढ़कर तो ऐसे लगता है कि डिक्शनरी के लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए, और दिल के अंदर दुआएं कि अल्लाह बच्चे दे तो ऐसे दे, भाई हो तो ऐसे हो, बेटे हो तो ऐसे हो, शोहर मिले तो ऐसे मिले। और ख्वातीन में भी यही खूबियाँ हो। हासिल क्या है सारी बात का खुलासा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनज़ीर सिफाते कमाल से आरास्ता थे। आपके रब ने आपको बेनज़ीर अदब से नवाजा था, हत्ता कि इसने खुद आपकी तारीफ में फरमाया, व इन्नकल आला खुल्क़िन अज़ीम। सूरत कलम की आयत 4 है। यकीनन आप अजीम अखलाक पर हैं। ये ऐसी खूबियां थी जिनकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंच आए, यानी अट्रैक्शन महसूस करते थे, दिलों में आपकी मोहब्बत बैठ गई, और आपको क़यादत का वो मुकाम हासिल हुआ कि लोग आप पर वारिफ्ता हो गए, यानी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे, कुर्बान जाते थे लोग आपके ऊपर। इन्हीं खूबियों के सबब आपकी कौम की अकड़ और सख्ती नरमी में तब्दील हुई, यहाँ तक कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गई। और इस बात को भी याद रखिएगा कि इन सफ़ात में आपकी जिन खूबियों का जिक्र है वो आपके कमाल और अजीम सिफात के मज़ाहिर, यानी उसकी ज़ाहरी चीज़ों की चंद छोटी छोटी लकीरें हैं, वरना आपके मजद और शर्फ और शमाइल और खसाइल की बुलंदी और कमाल का ये आलम था कि इनकी हकीकत और तह तक ना रसाई मुमकिन है, ना इसकी गहराई नापी जा सकती है। बल आलम वजूद के इस सबसे अजीम बशर की अजमत की इंतहा तक किसकी रसाई हो सकती है, जिसने मजदो कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर अपना नशेमन बनाया और अपने रब के नूर से इस तरह मुनव्वर हुआ कि किताब इलाही ही को इसका वसफ और खुल्क करार दिया, यानी कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तो ये थे प्यारे मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही तुतिम्मु सालिहात। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पूरी सीरीज़ में जो गलती हुई वो मेरी तरफ़ से और शैतान के धोखे थे, और कोई खैर की बात है अच्छी बात है तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कमी बेशियों को दूर फरमाए, हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबिही बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।